समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर। कार्यक्रम आज सवेरे में सुबह के 7:30 बज चुके हैं और 17 जुलाई 2024 की सुबह में अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर के हम स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। मैं हूं निखिल कुमार, मेरे साथ में हैं शगुन चोपड़ा।
हेलो निखिल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क एंड वी ब्रिंग यू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे विच इज 17th of July। ऑल दिस एंड मच मोर कमिंग अप, बट द हेडलाइंस first.
जी हाँ,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज शेयर्ड अ ग्लिम्स थ्रू द सोशल मीडिया दैट हाउ मेक इन इंडिया इज प्रोपेलिंग इंडियाज इकोनॉमी ऑन टू द ग्लोबल स्टेज। द थ्रेड सेड इंडियन बाइसिकल्स आर बिकमिंग अ ग्लोबल सेंसेशन विद एक्सपोर्ट सर्जिंग टू द यूके, जर्मनी एंड द नेदरलैंड्स। दिस ग्रोथ हाईलाइट्स इंडियाज राइजिंग इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल मार्केट्स। मेड इन बिहार बूट्स आर नाउ पार्ट ऑफ द रशियन आर्मीज गेयर, शोकेसिंग द अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल रीच ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। This milestone reflects India's growing influence in international defence markets and the high quality of its manufacturing capabilities. Kashmir willow bats were in high demand as the World Cup approached, solidifying their status as a global favourite. These bats exemplify India's superior craftsmanship and significant impact on the international cricket scene. Amul is taking India's unique flavors to the world, launching its products in the US. This international expansion highlights the global appeal of Indian dairy products and Amul's commitment to spreading the taste of India worldwide. India's UPI system is now a global phenomenon, enabling seamless digital payments in multiple countries. This technological advancement underscores India's leadership in fintech innovation and its commitment to revolutionizing digital transactions worldwide. The BrahMos missiles, a joint venture between India and Russia, are now operational in the South China Sea. This development emphasizes India's strategic defense capabilities and its significant role in enhancing global security. Indian products dominated Amazon's Black Friday and Cyber Monday sales, highlighting their global appeal. This success story showcases the international demand for made-in-India items and India's growing presence in global e-commerce markets.
केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्यों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, जनजाति कार्य मंत्री ज्वेलोराम, महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान तथा योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉ वी के पॉल और आनंद विरमानी आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं।
Government has convened an all-party meeting on Sunday ahead of the budget session of Parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both the Houses of Parliament. The budget session will be held from 22nd of this month to 12th of next month. The Union Budget will be presented on 23rd of July. It will be the first budget of the Narendra Modi government in its third term. Last month, while addressing the joint sitting of both the Houses of Parliament, President Draupadi Murmu had asserted that this budget will be an effective document of the government's far-reaching policies and futuristic vision.
भारत में जिनेवा में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध आईसीसीपीआर के अंतर्गत मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। मानवाधिकार समिति के सदस्यों ने बहुलवाद, अहिंसा और विविधता जैसे सिद्धांतों में निहित भारत की परंपराओं तथा लोकाचार की सराहना की।
Six people, including an Indian national, were killed in an attack on Ali bin Abi Talib Mosque in Muscat, Oman. The Indian embassy in Oman informed about the casualty on social media platform X and also stated that another Indian had been injured in the gun attack last night. The three unidentified gunmen were killed on the spot during the exchanged gunfire with the Omani security troops.
देवघर में 22 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले में पहली बार झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए एआई आधारित प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उपकरणों का उपयोग करेगी। राज्य पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने इस मेले के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए हैं। श्री सिंह ने कहा कि श्रद्धालुओं को लेकर सही समय पर दी गई सूचना इस तकनीक के जरिए संभव होगी। एक महीने तक चलने वाले श्रावणी मेला के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने आते हैं।
In Kerala, authorities have declared holiday in educational institutions in 8 districts today due to continued heavy rains in the state. The districts where the holiday has been declared are Kannur, Kozhikode, Wayanad, Palakkad, Thrissur, Idukki, Alappuzha and Kottayam. The holiday applies to all educational institutions including tuition centers, Anganwadis and professional colleges. District collectors have clarified that there will be no changes to the previously scheduled exams. India Meteorological Department or IMD has warned that heavy rains will continue in the state for the next 4 days. An orange alert has been issued for Malappuram, Kozhikode, Wayanad and Kannur districts. Yellow alert has been issued for the Pathanimitta, Alappuzha, Kottayam, Ernakulam, Palakkad districts for today.
एशिया कप 2020 टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई है। यह प्रतियोगिता शुक्रवार से श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हो रही है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम पहले दिन चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ खेलेगी। टूर्नामेंट में ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल की टीम है, जबकि मेजबान श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश ग्रुप बी में शामिल किए गए हैं। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। और अब समय हो चला है प्रमुख महानगरों से जुड़ी खबरों को जानने का, यानी कि हम सुनेंगे चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में क्या हो रहा है। शगुन से।
एब्सोल्युटली निखिल, आई विल स्टार्ट विद चेन्नई। द कस्टम्स ऑफिशियल्स एट द चेन्नई एयरपोर्ट हैव फोर्टेड अ बिड टू स्मगल इंडियन स्टार टॉर्टोइसेस टू मलेशिया एंड सिक्योर्ड एन इंडियन पैसेंजर। द पैसेंजर वॉज अबाउट टू बोर्ड अ फ्लाइट टू कुआलालंपुर। Customs officials intercepted and searched the checked-in baggage, a total of 138 star tortoises concealed in carton boxes. Wildlife Crime Control Bureau officers were informed about the incident. An inquiry is being conducted on the case. And the Indo-Cine Appreciation Foundation has organized a Korean film festival in the city. The film festival will begin at Tagore Film Center at Raja Annamalaipuram from 19th of this month. The screenings of the Korean films will begin at noon. And more news from Chennai. Greater Chennai Corporation has seized 20 tons of banned single-use plastic from Triplicane and adjoining areas. The GCC raided several streets and confiscated banned single-use plastic items such as plates, cups, covers and wraps. Vendors were fined by zonal officials from Thenampet. The bakeries and the sweet shops were found to use plastic covers used to pack their items. A total of 70 shops were raided and they had to pay a penalty of rupees 1,000. And now we'll take you to Bengaluru. The governor of Karnataka, Thavarchand Gehlot, appreciated the exceptional achievements of National Cadet Corps cadets from Karnataka and Goa region at the Inter-Directorate Sports Shooting Championships held recently in Thiruvananthapuram. The Karnataka and Goa NCC Directorate had emerged victorious by winning the trophy. He felicitated the victorious cadets at Raj Bhavan today in Bengaluru. He presented unit citations to the two best units nominated by the NCC Directorate for their exemplary performance during the training year. The governor said that NCC embodies a noble purpose of fostering character, discipline and an adventurous spirit with a profound sense of selfless service among the young generation. He further added that our youth must embrace a readiness to serve their country dutifully, irrespective of their chosen paths in life. And now moving on to Hyderabad Metro, Telangana State Government will be implementing the crop loan waiver from tomorrow onwards. State Chief Minister A. Revanth Reddy announced this at a meeting held in Hyderabad with district collectors and superintendents of police yesterday. The 2 lakh rupees loan waiver program will commence with waiving farm loans up to 1 lakh rupees initially. The state government will directly deposit the amount to farmers' loan accounts by tomorrow evening. An official release stated that clear instructions have been issued to the bankers that the loan waiver funds should not get diverted. It also said that if any banker is found depositing the released fund in other accounts, strict action will be taken against them. It may be recalled that the Congress Party promised crop loan waiver up to 2 lakh rupees during the state assembly elections held last year. Meanwhile, the opposition parties, including BJP and BRS, criticized imposing conditions for implementing the program in the name of the guidelines and alleged that several farmers will not get benefit of the program due to conditions. And now, Nikhil, what do we have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी हाँ, दिल्ली यातायात पुलिस ने मुहर्रम ताजिया जुलूस को ध्यान में रखते हुए शहर के कुछ मार्गों के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली दिल्ली परिवहन निगम और अन्य सिटी बसें आरामबाग तक ही जा पाएंगी। वहीं कनॉट प्लेस और केंद्रीय सचिवालय जाने वाली बसें रानी झांसी रोड, मंदिर मार्ग, पार्क स्ट्रीट से उद्यान मार्ग तक जाएंगी। रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को यातायात विभाग ने समय से पहले निकालने की सलाह दी है। इसके अलावा स्टेशन पहुंचने के लिए यात्रियों को कनॉट प्लेस से बचने और तिलक मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग या फिर राजघाट और जवाहरलाल नेहरू मार्ग के माध्यम से अजमेरी गेट की ओर पहुंचने के लिए कहा गया है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने कल प्रमुख विभागों के साथ, अध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों के साथ राजधानी के बड़ौदा हाउस में उत्तर रेलवे की कार्य प्रगति की समीक्षा की। यह कहा गया है कि संरक्षा रेलवे की प्राथमिकता है, जिसके लिए ट्रैक, रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग पर प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को बारिश के दौरान उत्पन्न होने वाले रेल यातायात में व्यवधान पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। इस बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली में पेट्रोल पंप के अलावा लगभग 300 स्थानों पर प्रदूषण जांच केन्द्र कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह जानकारी शहर में पेट्रोल पंप पर चल रहे प्रदूषण जांच केन्द्रों से हड़ताल के दौरान लोगों को समस्या होने पर ध्यान में रखते हुए यह बात साझा की है। इन सभी प्रदूषण जांच केंद्रों की सूची परिवहन विभाग दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। पावर परचेज एग्रीमेंट में हुई बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली के भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से कल मुलाकात कर आगामी विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा की मांग की है। भाजपा ने इस मुद्दे पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों से सांठगांठ की है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को अत्यधिक मूल्य देना पड़ेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी के मामले में 4 प्रमुख आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एनआईए ने अपनी जांच के दौरान यह पता लगाया था कि ये आरोपी एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का हिस्सा थे, जो युवाओं को विदेशों में आकर्षक नौकरियों का झांसा देते थे। तस्करी के शिकार युवाओं को फर्जी कॉल सेंटर में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, जो कि भारत, लाओस और अन्य देशों में स्थित ऑपरेटरों के माध्यम से विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित किए जा रहे एक विशाल नेटवर्क का था। और खबर अब मुंबई से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विट्ठल विट्ठल के दिव्य मंत्रोच्चार और भजनों के बीच कल दोपहर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पंढरपुर के लिए एक विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। मध्य रेलवे ने आषाढ़ी एकादशी के लिए पंढरपुर जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेन चलाई है। ये रेलगाड़ी बृहस्पतिवार को सुबह 10:50 पर पंढरपुर से रवाना होगी और उसी दिन रात में 8:45 पर सीएसएमटी पहुंचेगी। मुंबई की एक अदालत ने बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कल उसे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसपी भोसले के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि मिहिर शाह ने अभी तक गायब नंबर प्लेट के बारे में विवरण नहीं दिया और उन लोगों के नाम नहीं बताए जिन्होंने उसे भागने के दौरान शरण दी थी। शिवसेना यूबीटी नेता अमोल कीर्तिकर ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से रविन्द्र वायकर के निर्वाचन को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है। श्री कीर्तिकर जो 48 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे, उन्होंने मतगणना प्रक्रिया में चूक का आरोप लगाया है। शिवसेना उम्मीदवार श्री वायकर के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उन्होंने मतगणना के दिन ही पुनर्मतगणना के लिए आवेदन दायर किया था। और अब चलते हैं कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक राजीव कुमार ने मीडिया से कहा है कि यदि राज्य में कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर लिंचिंग की घटनाएं सामने आई हैं। इस पर राजीव कुमार ने कहा कि लोगों को किसी भी घटना के बारे में सबसे पहले पुलिस को सूचित करना चाहिए। तो ये थे अब तक प्रमुख महानगरों के प्रमुख समाचार। और शगुन अब हम लेंगे हाल ही मौसम। तो मौसम कुछ इस प्रकार है, दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे, मध्यम बारिश होने की आशंका है और अधिकतम तापमान आज 36 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान आज 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई की अगर हम बात करें तो बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और अब बात करें हम कोलकाता की, तो वहां पर आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शगुन, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम आज कैसा रहेगा?
राइट निखिल, इन चेन्नई इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 26 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 31 डिग्री। Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 26 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees Celsius and a maximum of 30 degrees Celsius.
और अब हम अपने श्रोताओं को बताएंगे इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहले शगुन, हम कहां से शुरू कर रहे हैं?
निखिल, वी आर गोइंग वे बैक इन टाइम। इन द ईयर 1489 निजाम शाह बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली।
और आपको बता दें कि वर्ष 1712 में आज के दिन ही इंग्लैंड, पुर्तगाल और फ्रांस ने युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
In the year 1930, Lord Irwin, a British viceroy, allows Indian moderates to visit Gandhi in prison.
वर्ष 1850 में आज के दिन ही हावर्ड वेटशाला ने तारे का पहला चित्र लिया था। और वर्ष 1893 में इंग्लैंड के आर्थर शेफ्सबरी टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे।
In 1948, the government announced that all discriminations against women in matters of employment will be done away with, and in future, women will be eligible for any public service, including administrative service and police service.
वर्ष 1917 में आज का ही वो दिन था जब जॉर्ज पंचम ने परिवार का उपनाम बदलकर विंडसर कर दिया था। इससे पहले ये शाही परिवार जर्मनी शाही घराने सॉक्सी, कोबुर्ग एंड गोथा के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1919 में आज के दिन ही फिनलैंड ने संविधान को अंगीकार किया था।
In 1974, जेपी नारायण लेड एन एजुटेशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द बिहार असेंबली।
वर्ष 1924 में आज के दिन ही ऑस्ट्रेलिया में संघीय चुनाव में मतदान अनिवार्य हो गया था। वर्ष 1929 में सोवियत संघ ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध समाप्त कर लिए थे। आज के दिन ही वर्ष 1980 में आज का वो दिन था जब ज़ेंको सुजुकी जापान के प्रधानमंत्री बने थे।
In 1979, Jagjivan Ram was elected Janata Parliamentary Party leader. Charan Singh was PM heading Janata S Congress coalition and Jagjivan Ram was leader of the opposition in the Lok Sabha.
वर्ष 1987 में आज के दिन ही ईरान और फ्रांस के राजनयिक संबंध टूटे थे। वर्ष 1994 में आज के दिन ही धूमकेतु शोमेकर लेवी 9 का पहला टुकड़ा बृहस्पति ग्रह से टकराया था। वर्ष 1995 में आज के दिन ही फोर्स पत्रिका ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर आदमी करार किया था।
इन द ईयर 1987 आर वेंकटरामन वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
वर्ष 2002 में आज के दिन ही रूस की स्वेतलाना फिफापोवा ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में एक नया यूरोपीय रिकॉर्ड कायम किया था। और वर्ष 2006 में आज का ही वो दिन था जब डिस्कवरी अंतरिक्षयान फ्लोरिडा के अंतरिक्ष केंद्र कैप कैनरवेल में अपनी 13 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद पृथ्वी पर सकुशल उतर करके आया था।
1997, K.R. Narayan, the vice president, he won in the presidential election with a record margin to become the next head of the state.
और अब कार्यक्रम में समय हो चला है जानी मानी हस्तियों को याद करने का. तो आपको बता दें श्रोताओं कि आज पुण्यतिथि है इंदुलाल याज्ञिक की. वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक थे. वे गुजरात प्रदेश के निर्माताओं में से एक और ऑल इंडिया किसान सभा के नेता थे. उन्होंने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की योजना बनाई थी. इंदुलाल याज्ञिक गुजरात की सत्याग्रह कमेटी के सचिव भी बनाए गए थे. वर्ष 1923 में उन्हें गिरफ्तार कर यरवदा जेल में महात्मा गांधी के साथ बंद किया गया था. और ये भी बात आपको बताना आवश्यक है कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महागुजरात सेवा ट्रस्ट को दान कर दी थी.
एंड टूडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग कानन देवी, इंडियन एक्ट्रेस एंड सिंगर. शी वॉज अमंग द अर्ली सिंगिंग स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा. शी वॉज ऑल्सो अ प्रोड्यूसर. She is known for movies such as Harjeet, Parajay, Abhinetri, Rishir Prem, Jora Bharat, Vishnu Maya and Prahlad. And for you listeners, we have this beautiful song to listen to, Tum Bin Kal Na Aave.
Tum bina kal na aave, mohe, tum bina kal na aave. Kachahu na hi sohave. भावे कछहू नाहि सुहावे. भावे तुम बिना कल न आवे. मोहे तुम बिना कल न आवे.
और आपको बता दें कि कानन देवी ने बिना किसी प्रशिक्षण के ही गायन की दुनिया में प्रवेश किया था और अभिनय के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी. वे पहली ऐसी बांग्ला कलाकार थी जिन्हें भारतीय सिनेमा में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 1976 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. कानन देवी जब सिर्फ 10 वर्ष की ही थी तब अपने एक पारिवारिक मित्र की मदद से उन्होंने ज्योति स्टूडियो द्वारा निर्मित फिल्म जयदेव में काम किया था. इसके बाद कानन देवी को ज्योतिष बनर्जी के निर्देशन में राधा फिल्म्स के बैनर तली कई फिल्मों में बतौर कलाकार काम करने का अवसर मिला था. और वर्ष 1934 में प्रदर्शित हुई फिल्म मां बतौर अभिनेत्री कानन देवी के लिए सिने करियर की सबसे पहली हिट फिल्म साबित हुई थी.
राइट. And we are also remembering Billie Holiday, American jazz and swing music singer. She made a significant contribution to jazz music and pop singing. Her vocal style was strongly influenced by jazz instrumentalists and she inspired a new way of manipulating phrasing and tempo. She was known for her vocal delivery and improvisational skills. And for you, we have this song in her voice, Love a Man.
I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own.
और श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है लाल मणि मिश्र की. वे भारतीय संगीत जगत के ऐसे मनीषी थे जो अपनी कला के समान ही अपनी विद्वता के लिए भी जाने जाते थे. बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉ लाल मणि मिश्र ने पटियाला के उस्ताद अब्दुल अजीज खां साहब को सुनकर के गुप्त रूप से विचित्र वीणा हेतु वादन तकनीक विकसित करने के साथ साथ भारतीय संगीत वाद्यों के इतिहास और विकास क्रम पर अनुसंधान किया. उन्होंने वैदिक संगीत पर शोध करते हुए सामिक स्वर व्यवस्था का रहस्य सुलझाया और सामवेद के प्राप्त स्वरों को संरक्षित करने के लिए उन्होंने राग सामेश्वरी का निर्माण भी किया था. भरत मुनि द्वारा विधान की गई 22 श्रुतियों का मानव इतिहास पर पहली बार डॉ मिश्र द्वारा निर्मित वाद्य यंत्र श्रुति वीणा पर एक साथ सुनना संभव हुआ था. संगीत की हर विधा में पारंगत लालमणि मिश्र ने अपनी साधना और शोध के बल पर एक अलग शैली विकसित की जिसे मिश्रवाणी के नाम से स्वीकार किया गया है.
Yeah.
और श्रोता आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है कांजीवरम श्री रंगचारी शेषाद्री की। वे भारत के जाने माने गणितज्ञ थे। उन्हें वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सीएस शेषाद्री स्वातंत्रोत्तर काल में भारतीय गणित के नेताओं में से एक थे। वे संगीत और कर्नाटक संगीत के भी कुशल गायक रहे थे, जो बड़ी बारीकियों में सक्षम थे। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और रॉयल सोसायटी के फेलो से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने ऐसी सफलताओं को गढ़ा है जो इस गहन अनुशासन की कई शाखाओं के आधार हैं। खासतौर पर जब हम उनके काम की बात करते हैं तो बहुपद के छल्ले, ज्यामिति, अपरिवर्तनीय सिद्धांत, प्रतिरूप सिद्धांत, वक्रों पर वेक्टर बंडल, नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय, परवलीय बंडल, मानक मोमोनियल सिद्धांत और शुबर्ट किस्मों के ज्यामिति पर उनके कार्य को शामिल किया गया है।
Today is also the birthday of P. Bharathiraja, the Indian film director and actor. He works mainly in the Tamil film industry but has also directed films in Telugu and Hindi. And he was honored with the Padma Shri Award in 2004 for his contribution to the film industry. He's also known for films such as Tick Tick Tick, Thiru and Taj Mahal.
आज ही पुण्यतिथि है रीता भादुड़ी की। वे हिंदी सिने जगत की जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। 1968 से लगातार फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रही और अपने 5 दशक के करियर में रीता भादुड़ी ने कभी हां कभी ना, क्या कहना, दिलविल प्यार व्यार और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं जैसी फिल्मों में काम किया था। आपको बता दें कि उन्होंने हिंदी के अलावा गुजराती फिल्मों भी काम किया और 3 दशक के फिल्मी करियर में लगभग 30 से ज्यादा टीवी धारावाहिकों के अलावा 70 फिल्मों में काम किया। कई सारे ऐसे टेलीविजन शोज हुए हैं जिनमें उनके काम को बहुत ही पसंद किया गया, लेकिन फिलहाल आपके लिए कभी हां कभी ना फिल्म का ये गीत जिसमें उनकी अदाकारी को काफी सराहा गया था।
Today we are remembering John William Coltrane. He is American jazz saxophonist, band leader and composer. He is among the most influential and acclaimed figures in the history of jazz and the 20th century music. Coltrane's first musical influence was his father, a tailor and part-time musician. John studied clarinet and alto saxophone as a youth and then moved to Philadelphia. And listeners, you are listening to Giant Steps by him.
आज ही पुण्यतिथि है रजत मुखर्जी की। वे प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक थे जो मुख्य तौर पर हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहे। कई बेहतरीन फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं जिनमें प्यार तूने क्या किया, लव इन नेपाल और रूट जैसी फिल्में शामिल हैं। रजत मुखर्जी ने राम गोपाल वर्मा के साथ मिलकर प्यार तूने क्या किया फिल्म के साथ अपने हिन्दी सिनेमा में सफर की शुरूआत की थी। आज जयंती है निर्मलजीत सिंह सेखों की। वे परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे। उन्हें यह सम्मान 1971 में मरणोपरांत मिला था। भारतीय वायुसेना से परमवीर चक्र के एकमात्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ते हुए उस युद्ध में वीरगति पाई जिसमें भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान से टूटकर उसका एक हिस्सा बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था।
Today it's also the birthday of Pranoy HS or HS Pranoy, the Indian badminton player. He has won bronze medals at the 2023 World Championships and at the 2022 Asian Games. He was also part of the Indian winning team at the 2018 Commonwealth Games and 2022 Thomas Cup.
आज ही जन्मदिन है रवि किशन का। वे भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, उन्हें रवि किशन शुक्ला के नाम से भी जाना जाता है और उनकी पहचान रवि किशन के नाम से ही है। हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में लगातार वे सक्रिय रहे हैं। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि आज जन्मदिन है पूजा सिहाग का। वे भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान हैं। उन्होंने बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। पूजा सिहाग ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के फ्री स्टाइल में जो 76 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीता था यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। और घड़ी की सुइयां अब यह इशारा कर रही है कि आप सभी से अनुमति लेने का समय हो चला है, तो आप सभी अपना ख्याल रखें और हमारे प्रोग्राम्स और समाचार सुनते रहें।
एंड स्टे ट्यून्ड फॉर समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन विच इज कमिंग अप नेक्स्ट, फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।